नमस्कार भारत, 22 मार्च बुधवार, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका और ब्रिटेन ने 8 देशों के यात्रियों को विमान में लैपटॉप लेकर आने पर लगाई रोक।
Elevated intelligence that we're aware of indicates that terrorist groups continue to target commercial aviation and are aggressive in pursuing.
भारत की सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद अदालत से बाहर सुलझाने को कहा, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा?
समझौते की मुश्किलें हैं क्योंकि जो इसमें कोई बार्गेनिंग का कोई पॉइंट नहीं है।
गंगा और यमुना को इंसान का दर्जा देने से क्या दूर हो जाएगी इनकी गंदगी? मिलवाएंगे आपको झारखंड की टैबलेट दीदियों से भी। अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमेरिका ने विमानों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 8 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले यात्रियों पर कुछ पाबंदी लगाई है, जिसके तहत इन देशों से आने वाले लोग लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। ब्रिटेन ने भी 6 मुस्लिम बहुल देशों पर इसी तरह का बैन लगाया है। तुर्की ने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। जर्मन चांसलर अंगेला मैर्कल के एक निकट सहयोगी ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन और उनके मंत्रियों को जर्मनी में किसी तरह की रैली नहीं करने दी जाएगी। राष्ट्रपति तैयब अपने अधिकारों को बढ़ाने की मंजूरी के लिए होने वाले जनमत संग्रह के लिए तुर्क मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। जर्मनी में भी बड़ी संख्या में तुर्क रहते हैं, इसलिए एर्दोआन वहां भी रैलियां करना चाहते थे, लेकिन जर्मनी ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद एर्दोआन ने जर्मनी की कड़ी आलोचना की थी। जर्मनी के हेस राज्य के प्रमुख फाल्कर बूफिए ने तुर्की के बारे में कहा,
Jemand, der sich so verhält, der kann in diesem Land nicht willkommen sein und deshalb sage ich sehr deutlich,
एर्दोआन जैसे रवैये वाले शख्स का हमारे देश में स्वागत नहीं है। मैं जानता हूं कि ऐसा करने के बाद हम पर कई किस्म का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा, लेकिन अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। जर्मनी में ज़्यादातर लोग तुर्की के राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के बारे में मेरे जैसी ही राय रखते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से नाराजगी जताते ये थे जर्मनी के हेस राज्य के प्रमुख फाल्कर बूफिए। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ब्रूनो ले रू ने इस्तीफा दे दिया है। उन पर आरोप था कि मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी 2 बेटियों को संसदीय सहायक के पद पर तब तैनात किया जबकि वो पढ़ रही थीं। ब्रूनो ने कथित तौर पर अपनी बेटियों को साल 2009 से 2016 के बीच $60,000 का भुगतान भी किया। रू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा है।
Je vois et j'entends le débat et les mises en cause que suscite le fait sur les vacances scolaires.
मेरी बेटियों की स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों के दौरान उनकी नौकरी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, मुझे उसकी पूरी जानकारी है। उनके अनुबंध में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी और वो सब सदन के नियमों के तहत आधिकारिक रूप से किया गया। ये थे अपना बचाव करते फ्रांस के आंतरिक मंत्री ब्रूनो ले रू, जो अब इस्तीफा दे चुके हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइली सेना प्रमुख ने अरब मीडिया के इस दावे को हवा दी है कि साल 2016 में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने अपने ही एक कमांडर को मार डाला। हिजबुल्ला कमांडर मुस्तफ़ा अमीन बदरुद्दीन की हत्या 2016 में हुई थी। इसराइली खुफिया विभाग के लेफ्टिनेंट जनरल गादी आइसेनकोट भी इस नतीजे पर पहुंचे कि मुस्तफ़ा अमीन को उनके ही साथियों ने मारा। सीरिया में विद्रोहियों और जिहादी ताकतों ने राजधानी दमिश्क पर नए सिरे से हमला बोला है। पिछले 2 सालों में इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। विद्रोहियों की तरफ से एक अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने जोबार ज़िले में अपने पांव दोबारा जमा लिए हैं। हालांकि सरकारी मीडिया का कहना है कि घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और सेना इलाके को खाली करा रही है। रविवार को भी उन्होंने यहाँ बढ़त हासिल की थी, लेकिन कड़े संघर्ष के बाद उन्हें लौटना पड़ा। अब आयकर रिटर्न भरने के लिए भी आधार कार्ड को ज़रूरी बनाया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। ग्वाटेमाला में अधिकारियों के मुताबिक पुलिस पर दंगाइयों ने कई हिंसक हमले किए जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने 18th स्ट्रीट गैंग नाम के एक आपराधिक गुट के चंगुल में फंसे 4 सुरक्षाकर्मियों को छुड़ाने के लिए उनके अड्डे पर छापा मारा था। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो पर बुधवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं। प्रभात पांडे इसके बारे में समाचारों में आपसे जिक्र कर ही चुके थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के कुछ मुस्लिम बहुल देशों के साथ साथ तुर्की से आने वाले हवाई जहाजों में लैपटॉप लाने पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने कहा है कि चरमपंथी हवाई जहाजों को निशाना बनाने के लिए नए तरीकों को आजमाने की कोशिश में लगे हुए थे। मंत्रालय का कहना है कि लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा, डीवीडी और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में बम छुपाया जा सकता है। पूरे ब्यौरे के साथ प्रभात पांडे।
मोरक्को, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये वो देश हैं जहां से यात्री विमान के अंदर लैपटॉप और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकते अगर वो अमरीका जा रहे हों तो। इस नई पाबंदी से 9 एयरलाइन और 10 एयरपोर्ट प्रभावित होने वाले हैं। नए नियम के मुताबिक मोबाइल फ़ोन को छूट दी गई है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से बड़े डिवाइस जैसे टैबलेट वगैरह ले जाने की मनाही होगी। वहीं ब्रिटेन ने 6 देशों के 14 एयरलाइंस पर यह पाबंदी लगाई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने मीडिया को फैसले की वजह बताते हुए कहा,
एलिवेटेड intelligence that we're aware of indicates that terrorist groups continue to target commercial aviation and are aggressive in pursuing.
खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन कमर्शियल विमानों को अपना निशाना बना सकते हैं और इसके लिए वो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो विस्फोटक सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़कर किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसी जानकारी के आधार पर होमलैंड सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी ने फैसला किया है कि सुरक्षा मुस्तैद करनी ज़रूरी है। इसके लिए कुछ नियत जगहों से आने वाले यात्रियों के लिए नियम कड़े करने चाहिए। ये थे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर। कनाडा ने भी संकेत दिए हैं कि वो भी इस तरह का बैन लगा सकता है। हालांकि इन बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चेक इन बैगेज के जरिए ले जाया जा सकता है। अमेरिका के इस फैसले की तुर्की ने आलोचना की है और कहा है कि इसे फौरन वापस लिया जाना चाहिए। मिस्र में कई लोगों ने भी इस फैसले को गलत बताया। काहिरा में रहने वाले अहमद रामजी अक्सर अमेरिका जाते हैं। उनका कहना है कि ये बड़ा अजीब फैसला है। इसकी वजह से हमारा अमेरिका पर भरोसा उठ जाएगा। अमेरिका जहां हर बात की आज़ादी है, जो एक विकसित देश है, उसका ये फैसला बड़ा हैरानी भरा है। कुछ खास देशों पर ही ये पाबंदी लगाना एक किस्म का नस्ल भेद है। ये थे काहिरा के नागरिक अहमद रामजी, जो अमेरिका के फैसले पर अफसोस जता रहे थे। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि इन सभी एयरलाइनों को इस पाबंदी को लागू करने के लिए 96 घंटों का समय दिया गया है। कहा जा रहा है कि कई हफ्तों तक इस पाबंदी पर नज़र रखी जाएगी। ये बैन कब तक लागू रहेगा, अभी तक ये बात साफ नहीं है।
अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई जहाज़ों में लैपटॉप ले जाने पर लगाई है रोक। रिपोर्ट सुना रहे थे प्रभात पांडे।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। और आइए अब रुख करते हैं भारत का। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में ढहा दी गई मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाए जाने के विवादित मुद्दे पर कोई भी फैसला देने की बजाय इसका हल अदालत से बाहर आपसी सहमति से निकालने का सुझाव दिया है। अदालत ने मुद्दे को संवेदनशील और भावुक बताते हुए ये राय दी। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने इस सलाह का स्वागत किया है, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसे ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 31 मार्च को इस मामले की अंतिम सुनवाई अभी होनी है, मगर अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें यह मुद्दा किस तरफ जा रहा है, कोई भी पक्ष अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं दिखता। ये समझने के लिए हमारे सहयोगी अपूर्व कृष्ण ने बात की लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी से।
पहली बात तो ये किसी का व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव मुकदमा बोला जाता है। तो मुसलमानों की तरफ से इसमें शिया सुन्नी भी शामिल है पूरी कम्युनिटी, और हिंदुओं की तरफ से जितने भी संप्रदाय हैं सब शामिल हैं इसमें। निर्मोही अखाड़ा भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है। तो उसमें कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था एक तो उसका समझौता नहीं कर सकती। दूसरी दिक्कत क्या है कि हिंदुओं की तरफ से तर्क ये है कि जो राम जन्मभूमि अपने आप में उसको देवत्व प्राप्त है, वो जगह ही पूज्य है, वहाँ मंदिर हो या न हो और वो जगह हट नहीं सकती, वो जगह अपरिवर्तनीय है। हिंदुस्तान के जो मुसलमानों का ये कहना है कि मस्जिद जहाँ पर एक बार तामीर हो गई बन गई वो ताकयामत मस्जिद रहेगी और वो अल्लाह की संपत्ति है, तो उसको कोई दे नहीं सकता, किसी को कोई अपनी तरफ से नहीं दे सकता। इसलिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं कि भाई हमें ये अख्तियार नहीं है कि हम मस्जिद की जमीन को छोड़ दें, किसी को दे दें, अदालत कर दे तो वो एक कानूनी संस्था है तो वो हो जाए। तो इसलिए इसमें समझौते की मुश्किलें हैं क्योंकि जो इसमें कोई बार्गेनिंग का कोई पॉइंट नहीं है।
आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि फैसला अगर अदालत कर दे उसको हम मान लेंगे, तो हाँ, अदालत फैसला क्यों ना कर पा रही है?
हाँ, अदालत के फैसले में जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे देखिए ये 2010 में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था और ये अभी 6-7 सालों में अभी सुनवाई भी रेगुलर नहीं हो पाई है। तो उसके एक तो वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है, तो हाई कोर्ट की तरह ऐसा नहीं हो सकता कि एक बेंच जो है वो 3 जजों के केवल इसी मामले की सुनवाई करे। उससे बड़ी दिक्कत यह है कि जो हाई कोर्ट में कई टन सबूत कागजात सब पेश हुए वो कोई इसमें हिंदी में है, उर्दू में है, फारसी में है, सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है कि उन सबका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। अभी सारा अनुवाद का काम भी नहीं पूरा हो पाया है, तो वो सबका अनुवाद हो, फिर उनको डे टू डे सुनवाई हो, और इसमें 2 दर्जन से ज्यादा पक्षकार हैं तमाम संगठन हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों की तरफ से, तो वो सबके वकील खड़े होंगे, सब बहस करेंगे, तो कई साल लगेगा। और मुझे लगता है इसीलिए चीफ जस्टिस को ये लगा कि अगर वो डे टू डे सुनवाई भी करें तो जैसे पिछली बार भी हुई थी कि वो जज ही रिटायर हो जाते हैं फिर नए जज आते हैं फिर सुनवाई होती है, तो उन्होंने एक अपनी सलाह दी है कि इसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए।
ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, सियासत इसमें कहाँ रह जाती है?
देखिए ये मामला पहले एक लोकल डिस्प्यूट था और स्थानीय अदालत में चल रहा था, जब विश्व हिंदू परिषद इसमें कूदी उसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन हुआ, फिर ये जो भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो हिंदू राष्ट्र का एक बड़ा उनका सपना है उसका एक पार्ट हो गया, और फिर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये कहा गया कि अयोध्या, काशी, मथुरा यानी 2 और जगह है, फिर 3,000 की लिस्ट दी गई। तो ये मामला इतना बढ़ता गया कि मुसलमानों को कभी कभी ये भी लगता है कि ये केवल एक मस्जिद का मामला नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके आड़ में अगर हम इसमें सरेंडर कर दें तो आगे फिर हिंदुस्तान में जो उनकी इस्लाम, उनका धर्म या संस्कृति को कोई खतरा हो जाए, इसलिए भी वहाँ एक हिचक है।
वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी लंबे समय से अयोध्या विवाद पर बारीकी से नजर रखते हैं, उनसे बात कर रहे थे अपूर्व कृष्ण। कोर्ट से जुड़ा एक और मामला, उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को सजीव घोषित कर दिया है। पर्यावरणवादी बहुत सतर्कता से इसका स्वागत कर रहे हैं। इस कदम का मतलब है कि अब इन नदियों को इंसानों की तरह ही कानूनी दर्जा मिल जाएगा। हालांकि दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड द एनवायरनमेंट की एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रदूषण को रोकने वाले मौजूदा कानूनों का खुलम खुला उल्लंघन हो रहा है। तो गंगा यमुना को इंसानों की तरह कानूनी दर्जा देने से क्या कुछ बदलेगा? यही सवाल पूछा पूर्व कृष्ण ने पर्यावरण मामलों के वरिष्ठ पत्रकार सोपान जोशी से।
हमारे यहाँ सामाजिक समस्याओं का कानूनन हल निकाला जाता है और फिर ये शिकायत होती है कि कानून का लोग पालन नहीं करते। तो अब बात ये है कि आप अदालत से जाकर अगर कोई फैसला ले आते हैं तो अदालत के आदेश से तो गंगा साफ हो नहीं जाएगी, अदालत को उसी सरकार से कुछ करने को कहना पड़ेगा जो सरकार पहले ही कोई 30 साल से ऐसे कार्यक्रम चला रही है जो नदियों को साफ करने के लिए है। उन कार्यक्रमों का नतीजा अब तक जो निकला है वो हमारी नदियों के पास से गुजरते हुए सूंघ के पता लग जाता है।
भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार आई उसके बाद से गंगा की सफाई को लेकर खास तौर से काफी उस पर जोर दिया गया, तो 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ।
देखिए जब ये बात पिछले साल उठी थी तो जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती ने ये कहा था कि काम अभी शुरू हुआ है और उनका काम अच्छा रहा या बुरा रहा इसका आकलन 2 साल के बाद होना चाहिए। अब जब कोई नेता इस तरह की बात कहे तो वाजिब बनता है कि उनको वो समय दिया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा कोई संकेत मुझे नहीं दिखा है कि जो पहले हुआ है उससे कुछ बहुत अलग चीज अब हो। उसके दो तीन मूल कारण है। एक तो नदियों के प्रदूषण की समस्या असल में हमारे पानी के उपयोग से जुड़ी हुई है। हमारे सभी शहरों का आदर्श यही है कि दूर दूसरे शहरों और गांवों का पानी लूट कर अपने पास ले आए और अपने जल स्रोतों का ध्यान न दें। तो दिल्ली का पानी बहुत दूर दूर से 300-300 किलोमीटर दूर से आता है, और भाखड़ा परियोजना से पहले रावी ब्यास का पानी लाया गया, टेहरी बांध का बनाने का एक कारण यही बताया गया था। गढ़गंगा से दिल्ली का पानी आता है और रेणुका बांध बनने की भी बात है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में नदियां नहीं थी। दिल्ली में कम से कम 13 छोटी बड़ी नदियों का वर्णन मिलता है जो यमुना से मिलती थी, लेकिन उनको हमने अब नाला बना दिया है। अब वो आदर्शवाद में ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, हमें हम पवित्र नदियां हैं, हमको ठीक करना चाहिए। आदर्शवाद में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन उसका कुछ होगा, ये मेरी ऐसी उम्मीद है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं।
जी, दिल्ली जो कि राजधानी है वहीं पे यमुना बहती है, उसकी हालत सब देखते हैं, कहीं कोई झलक आम आदमी को तो दिखाई नहीं देती यमुना नदी जो है उसमें कोई परिवर्तन आने जा रहा है या उसकी कोई उम्मीद भी है। लेकिन जो विशेषज्ञ लोग हैं जिनको पता रहता है कि कुछ कुछ कहीं कहीं हो रहा होगा जिसका असर बाद में दिखाई देगा, क्या दिल्ली में भी इसकी कोई झलक दिखाई नहीं दी है आज तक आपको?
देखिए, मुझे तो अब तक नहीं दिखा है। सरकार अलग अलग तरह से इसकी बात कर रही है, कुछ अच्छी बातें सुनने को भी मिली है लोगों से, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि सरकार अगर कुछ बहुत अच्छा करना चाहे तो भी ये समस्या केवल सरकार की नहीं है, ये एक समाज की समस्या है। आखिर दिल्ली में देश के सबसे धनवान लोग, सबसे ताकतवर लोग रहते हैं, लेकिन वो ताकतवर लोग जो मैला पानी वो खुद पैदा करते हैं उसको साफ करने की कीमत नहीं चुकाते। मुझे नहीं पता कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का मैला पानी कहाँ जाता है, लेकिन हो सकता है ऐसी भी परिस्थिति आ खड़ी हो कि कोई नदी की तरफ से जाके हाईकोर्ट के शौचालयों की तरफ उंगली उठाए कि यहाँ से मैला पानी नदियों में आता है। तब हाईकोर्ट क्या करेगा मैं नहीं कह सकता, अगर ऐसा होता है तो हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है, जो आदेश दिया है, वो हो सकता है न्यायाधीशों को कुछ ऐसा दिखा हो जो और किसी को नहीं दिखा, लेकिन वो क्या है ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे करने के कोई तरीके, व्यवहारिक तरीके अब तक तो सामने आए नहीं है।
नदियों को भारत में पहले से ही देवी और देवताओं का दर्जा दिया जाता रहा है, लेकिन अब उन्हें इंसान बनाया गया है उनकी सफाई के लिए। देखते हैं कि इससे क्या कुछ फर्क आता है। वरिष्ठ पत्रकार सोपान जोशी से बात कर रहे थे अपूर्व। और इधर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु नदी के पानी के बंटवारे का जो विवाद है वो भी काफ़ी पुराना है, और ये मामला विश्व बैंक तक गया जिसकी सलाह के बाद दोनों देश जल विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उड़ी हमले के बाद वार्ता को लेकर अनिश्चय की स्थिति थी। हालांकि इस सप्ताह इस्लामाबाद में दोनों देशों के विश्लेषक फिर बातचीत के लिए जुटे। दो दिन की बैठक कल खत्म हुई। क्या हुआ इसमें, सुनिए इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता फरहत जावेद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नदियों के पानी के मुद्दे पर इंडस वाटर कमिश्नर्स की 2 साल बाद होने वाली 2 रोजा बातचीत आज खत्म हुई, जिसमें 10 मेंबर्स वाले इंडियन डेलीगेशन के प्रमुख इंडियन इंडस वाटर कमिश्नर पीके सक्सेना थे। इस बातचीत में दरियाए चिनाब पर पानी के 3 विवादित प्रोजेक्ट्स मियार, पकालगुल और लोअर कलनाई के डिजाइन पर बातचीत की गई, जिसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन के प्रमुख आसिफ बेग ने मीडिया को बताया कि इंडिया मेयार प्रोजेक्ट के डिजाइन की तब्दीली पर राजी हो गया है।
प्रोजेक्ट जो है वो मेयार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उस पे जो है इंडिया ने इन्फॉर्म किया है कि दे आर गोइंग टू री इंजीनियर इट एंड रीसबमिट इट्स डिजाइन। पकलदुल के ऊपर डिजाइन पे भी बात हुई है और लोअर कलनई के डिजाइन पे भी बात हुई है, और एक दूसरे को असाइनमेंट्स दी गई हैं कि वो इनको एनालाइज करें, फर्दर एनालिसिस ऐड करें अपने अपने सब्सटेंशिएशंस में, और फिर दोबारा जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें देन अगेन बोथ ऑफ अस विल मेक एन एफर्ट टू कन्वर्ज ऑन द इशू।
पाकिस्तान ने 120 मेगावाट के मेयार हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के डिजाइन को इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। पाकिस्तान को बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स के डिजाइन पर भी तकनीकी एतराजात हैं, जिन पर अगले इजलास में बातचीत की जाएगी। आसिफ बेग का कहना था कि इंडियन डेलीगेशन अगले महीने वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत के मुद्दों पर भी बात करना चाहता था, मगर पाकिस्तान ने किशनगंगा के मुद्दे पर बहस करने से इनकार कर दिया और कहा कि रतले और किशनगंगा का फैसला आर्बिट्ररी कोर्ट में ही होगा। उनके मुताबिक इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के चंद आर्टिकल्स पर नरमी चाहता है जिस पर पाकिस्तान राजी नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि इस 2 रोजा बातचीत में इंडिया मानसून की बारिशों के बारे में पहले से जानकारी देने और दरियाओं में पानी के बहाव का डेटा देने पर भी राजी हुआ है। कमीशन की अगली बैठक दिल्ली में इसी साल अगस्त में हो सकती है। फरहत जावेद, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद।
और आइए अब अखबारों में क्या कुछ छपा है इस पर नजर डाल लेते हैं। प्रभात पांडे अखबारों के साथ आ चुके हैं। जी प्रभात, बताइए क्या है आज।
जी जी निखिल, हिंदुस्तान टाइम्स में पहले पन्ने पर जो फुल पेज का विज्ञापन छपा है उसको पलटने के बाद खबरों का सिलसिला जो शुरू होता है, तो उसमें है पहली खबर ये छपी हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को अखबार के मुताबिक डांट लगाई है और कहा है कि वो सदन की कार्यवाही के दौरान मौजूद क्यों नहीं रहते। मोदी अखबार के मुताबिक मोदी ने कहा है कि कई ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ दल के सांसदों की गैर मौजूदगी से पीएम मोदी नाराज़ हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों की तरफ से मैं खुद हिस्सा नहीं ले सकता, आप लोगों को खुद हिस्सा लेना होगा इन ज़रूरी मुद्दों पर। साथ ही अखबार ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को भी पहले पन्ने पर जगह दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और राज्य में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने देंगे। पायोनियर ने उस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है जिसके मुताबिक सरकार ने अब नकदी लेन देन की सीमा को 3 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया, यानी अब 2 लाख रुपए से ज़्यादा का जो भी नकदी का लेन देन है वो आप कैश में नहीं कर सकते। इसके साथ ही द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वो ऐसे नागरिकों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक मौका और दोगी जो बहुत ही ज़रूरी वजहों से ऐसा नहीं कर पाए हैं।
जैसे अभी हम फौज का एक मामला आया
जी
था,
फौज का एक मामला आया था 31 मार्च तक। हालांकि ऐसे नागरिकों के लिए रिजर्व बैंक से नोट बदलने की सीमा है लेकिन रिजर्व बैंक में इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ और उसके बाहर हज़ारों लोगों की लाइन लगी है। इसके अलावा निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगा दैनिक जागरण में खबर छपी है पहले पन्ने पर कि कोर्ट की फटकार के बाद DDCA मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश हुए। वो लगातार जो है वो चेतावनियों के बावजूद अदालत में नहीं पहुँच रहे थे लेकिन कल जाकर वो। इसके अलावा हिंदुस्तान हिंदी अखबार ने पहले पन्ने पर खबर छापी है कि अब रेलवे जो है हर 2 घंटे पर ताज़ा भोजन मुहैया कराएगा। रेलवे को इस तरह की कई शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर ट्रेन में जो है बासी भोजन दिया जा रहा है और पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं और ताज़ा खाना नहीं दिया जा रहा है। जी निखिल,
बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं BBC रेडियो पर निखिल रंजन के साथ।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और आइए अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में हिंदी शिक्षकों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए केंद्र सरकार ने 1379 हिंदी शिक्षकों को नियुक्त कर रखा है लेकिन इनका वेतन बंद कर दिया गया है। नाराज शिक्षकों को अब आंदोलन करना पड़ रहा है जबकि BJP के नेता चाहते हैं कि प्रदेश के लोग हिंदी बोलना सीखे लेकिन वेतन का बोझ राज्य सरकार उठाए। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट सुनिए।
नागालैंड में करीब 2 साल से बिना किसी विपक्ष के सरकार चल रही है। राज्य में नागालैंड पीपल्स फ्रंट की अगुवाई में डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड की सरकार है लेकिन लोगों की समस्याओं को सदन के भीतर उठाने के लिए वहां विपक्ष की भूमिका में कोई जनप्रतिनिधि नहीं बचा है। हालात अब ये है कि प्रदेश में हर छोटी बड़ी समस्या के लिए लोगों को खुद ही आवाज उठानी पड़ रही है। इस बार नागालैंड सरकार को राज्य के हिंदी शिक्षकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। विरोध की वजह है इन हिंदी शिक्षकों को पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है। विरोध भले ही वेतन के लिए हो रहा है लेकिन चरमपंथ की समस्या से प्रभावित नागालैंड पूरी तरह एक गैर हिंदी प्रदेश है और अब यहाँ हिंदी बहस का विषय बनी हुई है। नागालैंड में भाषा के सवाल पर नागा समाज पहले से ही बंटा हुआ है। नागामीज भाषा को राज्य की दूसरी अधिकृत भाषा के तौर पर बढ़ावा देने के मुद्दे पर पहले से ही विवाद है। राज्य में 17 प्रमुख जनजातियां हैं और इनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए सबसे ज्यादा यहाँ नागामीज भाषा ही बोली जाती है। इन विवादों के बीच हाल ही में नागालैंड सचिवालय के सामने विरोध के दौरान इकट्ठा हुए हिंदी शिक्षकों के हाथ में मौजूद तख्तियों पर लिखा था, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नागालैंड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका जवाब देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री इताचू कहते हैं, हम राष्ट्रीय भाषा हिंदी को हर तरह से महत्व देना चाहते हैं और इसका प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इसके लिए केंद्र का सहयोग भी मिलना होगा। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत नियुक्त किए गए हिंदी शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए मिलने वाली राशि अभी केंद्र सरकार ने जारी नहीं की है। ऐसे में आंदोलन करने वाले शिक्षकों को राज्य के खजाने से ही भुगतान करना पड़ेगा। ये थे नागालैंड के शिक्षा मंत्री इताचू के शब्द। असम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक संस्कृत को अनिवार्य करने का फैसला लेने वाली बीजेपी नागालैंड सरकार में जूनियर पार्टनर है, लिहाजा प्रदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। नागालैंड बीजेपी के अध्यक्ष विशा सोलिए लुहांगू ने बीबीसी से कहा,
पहले तो हाँ ऐसा तो था, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट ले रहा है, तो है हाँ, कंटिन्यू करना पड़ेगा। और तो ये हमारा पार्टी के लिए 2018 इलेक्शन के लिए बहुत फायदा होगा।
नागालैंड में सामने आने वाले किसी भी तरह के विरोध को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार पिछले महीने नागालैंड में स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण को लेकर हुए हिंसक आंदोलन को अभी भुला नहीं पाई है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग को अपनी कुर्सी छोड़ देनी पड़ी थी। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
और अब चलते हैं झारखंड, जहां कुछ औरतें जिन्होंने कभी मोबाइल फोन को हाथ भी नहीं लगाया था, वो आज टैबलेट पर पैसों के लेन देन का काम देख रही हैं। इन्हें टैबलेट दीदियां कहा जाने लगा है। कौन है ये टैबलेट दीदी और इन्हें ये काम में इस काम में क्यों लगाया जा रहा है, जानने के लिए हमारे सहयोगी रवि प्रकाश हेजल गांव में टैबलेट दीदी से मिलने खुद पहुंचे। सुनिए ये रिपोर्ट।
यह सिर्फ एक गीत नहीं, झारखंड की गवई महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी भी है। मैं रांची से 25 किलोमीटर दूर अनगढ़ा प्रखंड के हेसल गांव पहुंचा हूं, बबली करमाली से मिलने। यह गीत वे और उनके साथ की कुछ महिलाएं गा रही हैं। बबली को गांव के लोग टैबलेट दीदी के नाम से जानते हैं। हाल के दिनों तक उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं था, अब वे टैबलेट पर काम करती हैं, डेटा अपलोड करती हैं, उनका फेसबुक प्रोफाइल भी है, उनकी ज़िंदगी स्मार्ट बन गई है। उन्होंने जब पहली बार टैबलेट का नाम सुना तो हैरत में पड़ गई, सोचा कि जब कोई बीमारी ही नहीं है तो फिर लोग मुझे टैबलेट क्यों देंगे। उन्होंने बीबीसी से कहा,
तो सब ने पूछा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं, तो हम बोले हमको भी नहीं पता, बस हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है, टैबलेट दीदी के तौर पर वहाँ पर काम करना है। तो फिर वहाँ पर गए तो पहला दिन हम लोग को ये बॉक्स दिया गया, टैबलेट बॉक्स स्टार्टिंग में, तो हमने देखा कि इतना बड़ा बॉक्स है, कैसे काम किया जाएगा, तो फिर खोल के फिर दिया गया। फिर हमें फिर फर्स्ट डे तो हम लोगों को ऑन ऑफ करना सिखाया गया कि कैसे इसको ऑन करना है ऑफ करना है, क्योंकि वो आता नहीं था ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि सिंपल मोबाइल सबके पास था।
बबली झारखंड की उन 700 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें लोग टैबलेट दीदी पुकारते हैं। JSLPS के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव अभिनव बक्सी ने बताया कि राज्य के करीब 45,000 स्वयं सहायता समूहों की बैठकों का हिसाब किताब इन टैबलेट दीदियों के जिम्मे है। इन्हें टैबलेट के जरिए MIS डेटा अपलोड करने की ट्रेनिंग दी गई है, इनमें से कई तो 8वीं पास भी नहीं है। अभिनव बक्सी ने बीबीसी से कहा,
इसमें हमने 700 टैबलेट दीदीज को ट्रेनिंग देके आदिवासी बहुल महिलाएं जो थी, जो पहले MIS का काम बही खाता में करती थी, वो उनको हमने टारगेट करा और उनको बकायदा 5 दिन का इन हाउस ट्रेनिंग देके उनको टैबलेट से प्रशिक्षण दिया। MIS की जो लेखा जोखा होता है उनका हर साप्ताहिक बैठक में उसको वो लोग सीधे टैबलेट में भरने लगी।
दरअसल स्वयं सहायता समूहों ने गांव की महिलाओं की जिंदगी बदल दी है, उन्हें यह ताकत दी है कि वे टैबलेट पर काम कर सकें, उद्यम खड़ा करें और आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बने। हैसल में मेरी मुलाकात खुशी महिला समूह की अध्यक्ष प्रभा देवी से भी हुई। उन्होंने बताया कि समूह में रहने के कारण उनका महत्व बढ़ा है, वे देश दुनिया की खबर रखने लगी।
पहले हमको अच्छा नहीं लगता था शुरू, लेकिन अब हमको बहुत अच्छा लगता है और हम अपना घर के पास भी और लोगों को जुड़ने के लिए समूह में सहमति दी। समूह में रहने से बहुत आदमी को फायदा भी है, दुख सुख में भी हेल्प हो जाता है और परिचय भी हो जाता है।
टैबलेट दीदी का काम कर रही अधिकतर महिलाओं ने कभी कंप्यूटर या टैबलेट नहीं देखा था, लेकिन ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, अब वे टैबलेट फ्रेंडली बन चुकी हैं। अभी झारखंड के रांची, पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम जिलों की 700 महिलाएं टैबलेट दीदी के तौर पर काम कर रही हैं। इस साल 3,000 और महिलाओं को टैबलेट दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए हेसल।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार जल्दी से सुन लेते हैं प्रभात पांडे से।
बीबीसी समाचार, अमरीका ने विमानों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 8 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले यात्रियों पर कुछ पाबंदी लगाई है, जिसके तहत इन देशों से आने वाले लोग लैपटॉप और अन्य कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। जर्मन चांसलर अंगेला मैर्कल के एक निकट सहयोगी ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन और उनके मंत्रियों को जर्मनी में किसी भी तरह की रैली नहीं करने दी जाएगी। बीबीसी समाचार।
आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। आपसे शाम को दिन भर में फिर मुलाकात होगी। निखिल रंजन को प्रभात पांडे के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।